Gracias, Bruno.
Yashodhanandana Rajajanaranjana Yashodhanandana Rajajanaranjana Yamonatira Vanachari Dava Javihari Jaya Radha Madhava Javihari Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Giridhare Radha, Giridhare Radha, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक संख्या 16 एषः वः श्रेयः आधास्य गोपगोकुलनंदन अनेन सर्वदुर्गाणि यूयम् अञ्जः करिष्यतः केशवश्रेयाधास्यद् केशवश्रेय आधास्य गोपगोकुलनन्दनः गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि अनेन सर्वदुर्गाणि अनेन सर्वदुर्गाणि यूयं मञ्जस धरिष्यतः यूयं मञ्जस्तरिष्यतः केशवश्रेयाधास्य केशवश्रेयाधास्य ಗೋಪ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋಪ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಅನೇನ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಅನೇನ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಯೂಯಂ ಮಂಜಸ್ತರಿಷ್ಯತ ಯೂಯಂ ಮಂಜಸ್ತರಿಷ್ಯತ ಗೋಪ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಮಂಜಸ್ತರಿಷ್ಯತ ಏಷವ ಶ್ರೇಯ ಆರಾಧ್ಯ ಗೋಪ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಅನೇನ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಮಂಜಸ್ತರಿಷ್ಯತ ಶ್ರೇಯಾದಾಸ್ಯ ಗೋಕುಲನಂದನ ಸರ್ವದುರ್ಗಾಣಿ ಮಂಜಸ್ತರಿಷ್ಯತ ಮಾತಾಜಿ ಮಂಜಸ್ತರಿಷ್ಯತ ಆದಶತ್ ಗೋಪ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಯೂಯಮಂಜಸ್ತರಿಷ್ಯತ शब्दार्थ इस प्रकार है एषः यह बालक वह तुम सबों के लिए श्रेयः अत्यंत शुभ आधास्यत शुभ कर्म करेगा शुभ कार्य करेगा गोप गोकुल नंदनः जैसे एक ग्वाल बाल ग्वालों के परिवार में गोकुल के पुत्र रूप में पैदा हुआ हो अनेना इसके द्वारा सर्वदुर्गाणी सभी प्रकार के कष्ट यूयम तुम सभी अंजह सरलता से तरिष्यता पार कर लेगा अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइंग रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह बालक गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए सदैव शुभ कर्म करेगा। इसकी कृपा से तुम लोग सारे कठिनाइयों को पार कर सकोगे। तात्पर्य
कृष्ण ग्वालों तथा गौओं के परम मित्र है, इसलिए उन्हें स्तुति किया जाता है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च की प्रार्थना के रूप में की जाती है। उनके धाम गोकुल में उनकी लीलाएं ब्राह्मणों तथा गौओं की अनुकूल होती है। उनका सर्वोपरि कार्य है गौओं को तथा ब्राह्मणों को सारे सुख देना। ब्राह्मणों के लिए सुख देना गौण है, गौ ही सर्वोपरि है। उनकी उपस्थिति से सारे लोग की कठिनाइयां दूर होंगी और वे दिव्य आनंद प्राप्त करेंगे। ओम ज्ञान विरंदस्य ज्ञानांजन शलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणलिता श्रीशाकान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये जो श्लोक गर्गाचार्य उच्चारण कर रहे हैं, ये श्लोक भागवतम में नंद महाराज उच्चारण करते हैं। जब गोवर्धन लीला समाप्त हुआ उसके बाद नंद महाराज सभी नंद गोपों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे थे, तो सब लोगों ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि 7 साल का बालक इतना अद्भुत कार्य कैसे किया, गोवर्धन को उठाने का कार्य। तो समय कृष्ण की सारे लीलाओं का स्मरण करते हुए सभी गोकुल में सभी लोग खास करके गोप नंद उपनंद इत्यादि आनंद में मग्न हो गए। तब नंद महाराज कहने लगे, अभी याद आ रहा है मुझे, जब इनका नामकरण हुआ था ना, गर्गाचार्य ने इनके यही बालक के बारे में कहा था, तो गर्गाचार्य ने इन जिन श्लोकों को उच्चारण किया वही श्लोक नंद महाराज सारे अन्य लोगों को कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर ये जो श्लोक जो गर्गाचार्य उच्चारण कर रहे हैं वो गुप्त रूप में हुआ था। नंद महाराज के भाई भी नहीं थे, नौकर भी नहीं थे, कोई नहीं थे, केवल नंद महाराज इन बातों को सुन रहे हैं। और जिस चीज को नंद महाराज ने गुप्त रूप में रखा था या गुप्त रूप में सुना था, उन्हीं बातों को गर्गाचार्य की बातों को सारे गोकुल में वो प्रचार करते हैं, यानी वो बताते हैं। तो ये जो श्लोक है आपको भागवतम के 10वां स्कंध का 26वां अध्याय का 19वां श्लोक है, सेम श्लोक प्राप्त होगा आपको। तो आप देखेंगे उस श्लोक में 10वां स्कंध का 26वें अध्याय का 19वां श्लोक भी यही श्लोक है, क्योंकि नंद महाराज गर्गाचार्य ने जो भी कहा उन सब बातों को किसको कहते हैं, उपनंद इत्यादि लोगों को कहते हैं। यानी अभी ये प्रसंग में कुछ लोग जो चल रहा है पूरा प्रवचन गर्गाचार्य का जो प्रवचन है, यानी उनकी जो बातें हैं वो सारे बातें नंद महाराज 26वें अध्याय में वापस सुनाते हैं नंद गोपों को, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। یعنی جو نند مہاراج نے ابھی گپت روپ میں سنا ہے, ابھی انہی گپت روپ میں جو سنا ہوا باتوں کو ادھر گرگاچاری کے ایسا مجھے کہا تھا کر کے نند اپرند اتیادی کو سناتے ہیں گورتم لیلا کے بعد. اس ادھیائے کا نام ہے ونڈرفل کرشنا, ادبھت کرشنا ہے, ونڈرفل کرشنا ایسا اس ادھیائے کا نام ہے. تو پرسنگ یہ آتا ہے کہ ایسا کیوں نند مہاراج نے اتنا دن تک کیوں گپت رکھا تھا, کیونکہ جیسے گورتن لیلا میں بھگوان نے گوردھن کو سات دن سات رات تک اٹھا کے سارے گوکل واسیوں کو رکشا کیا, جب کوئی رکشا ہوتا ہے تو ترنت بھگوان کا سمرن ہوتا ہے. تو سبھی لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ کرشن دیوتا ہے کیا, کہ ایسا لگتا مہا پرش ہو سکتا ہے, بہت شکتیشالی ہو سکتا ہے. ویسے لوگوں کے من میں انیکوں پرکار کی بھرانتی تھی, بھرم تھا کرشن کے وشے میں. لیکن یہ دھیان میں رکھنا چاہیے گوردھن لیلا کے بعد جو گوپوں نے بھرم کا انبھو کیا ان کو یہ استھت میں کرشن کا آشچریہ یعنی کرشن کے لیلاؤں کا آشچریہ کا انبھوتی جو ہے وہ بھرم کے وجہ سے ہی ہوتا ہے. تو کرشن کے وشے میں بھرم ہونا بھکت کے لیے ان کا کرشن کا جو ایشوری کا آسوادن ہے. تو کرشن کا ایشوری کا آسوادن ایشوری کے بھکت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو مادھوری بھکت بھی کرشن کا ایشوری کا آسوادن کرتے ہیں. ایک مادھوری میں یا کرشن کی مدھرتا کو آسوادن کرنے والے بھکت ہیں, جب ان کے سامنے کرشن اپنے ایشوری کو پرکاشت کرتے ہیں تو ایشوری کو بھی آسوادن کرتے ہیں. کیسے آسوادن کریں گے؟ وہ آسوادن کریں گے برمت ہو کے آسوادن کریں گے. تو پھر واپس یہ ایشوری کا گیان زیادہ ان کے اندر اور پرکٹ ہو کے ان کی مدھرتا کو ناش نہ کرے, اس کی وجہ سے یہ جو کرشن کی تتو ہے یا کرشن تتو جو ابھی ادھر ورنن کر رہے ہیں گرگاچاریہ, انہیں باتوں کو نند مہاراج کہتے ہیں. یہ بالک جو ہے نا مجھے بھی یاد ہے, ہاں نند مہاراج نے کہا تھا ان کا نام کرن سنکار سمے میں کیا کہا تھا, یہ جو بالک ہے یہ ہم کو ہمارے سارے کشتوں سے دور کرے گا, بہت آسانی سے دور کرے گا. ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر نارائن کی شکتی آ گیا ہے. ابھی جیسے ہی بات نند مہاراج نے کہا تو سبھی لوگ ایک دم شانت ہو گئے. ہاں ہاں یہ ہمارا بچہ ہے, ہمارا بچہ جو ہے سبھی لوگ سوچتے رہے کہ ہمارا بچہ ہے. نند مہاراج نے یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ ہے, نے کہا یہ لڑکا جو ہے, یہ لڑکے کا ارتھ کیا ہے, یہ لڑکے کا ارتھ ہے ہم سب کا لڑکا ہے, سب کا بچہ ہے یہ. تو اس کی وجہ سے یہ گوردھن لیلا کے بعد ایک وششٹ واتسلیہ رس کا انوبھوتی سارے گوپوں نے کیا, سارے گوپیوں نے کیا, کیونکہ واتسلیہ رس کا انوبھو کا لاسٹ چیپٹر ہے یہ گوردھن دھارن لیلا. اس کے بعد کرشن کا جو مادھوری لیلاؤں کا ایک بالکل بہرنگک روپ میں پراکٹی شروع ہوتا ہے. ویسے تو گوردھن لیلا میں کیول تھوڑا سا پورو راگ کا انوبھوتی ہو رہا تھا, لیکن کرشن کی مادھوری میں لیلاؤں کا ورنن گوردھن لیلا کے بعد شروع ہوتا ہے. دوسرے شبدوں میں یہ جو واتسلیہ بھکتوں کا واتسلیہ رس کا پریم کا جو انوبھوتی ہے گوردھن لیلا کے ساتھ سماپت ہوتا ہے, وہ اس کا جو ویبھو ہے اس کا لاسٹ چیپٹر یا لاسٹ ایک جھلک کیا ہے, جب ان شلوکوں کو نند مہاراج نے اپنند اتیادیوں کو کہا تھا. تو 26 ادھیائے یاد رکھیے گا, 26 ادھیائے کا 19 شلوک میں یہی شلوک ریپیٹ ہوتا ہے. ابھی چلیے یہ شلوک کو ہم تھوڑا سا جاننے کے لیے پریاس کرتے ہیں. ابھی پچھلے شلوک میں نام کرن ہو گیا ہے, جب نام کرن ہو گیا نام کرن ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا اس کا ورنن ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ نام دے دیا اور نام کے وپریت کاریہ کرنے لگا, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو جب جوتش آتے ہیں گھر میں اور جوتش شاستر کا ورنن کرتے ہیں, وہ بچے کے بارے میں کہتے ہیں, تو کہنے کے سمے کیول ایسے ہی کہ من مانی نام کرن کرتے ہیں. وہ جوتش شاستر کے انوسار جو بھی ان کے گن ہیں وہ گنوں کے انوسار ان کا نام کرن کیا جاتا ہے, اور نام کرن کرنے کے بعد وہ نام کے انوسار وہ کیسے کس پرکار کے کاریہ کریں گے ان کا ورنن کرتا ہے. اصل میں گن ہے کاریہ ہے, گن اور کاریہ ان دونوں کے اوپر آدھارت ہو کے نام رہتا ہے. ابھی اس شلوک میں کرشن کا جو کاریہ ہے اس کا ورنن کیا گیا ہے. تو ان کا گن کا ورنن کیا گیا ہے, ان کا کاریہ کا بھی ورنن کیا گیا ہے. پہلے کی جو دو لائن ہیں उसके अंदर उनका गुण का वर्णन किया गया है और बाकी दो लाइन में उनका कार्य का वर्णन किया गया है। तो एक गुणों कार्य के अनुसार उनका नामकरण किया। अत्यंत में गर्गाचार्य के मन में कृष्ण का दर्शन करने मात्र से कृष्ण की सारे लीला स्मरण हुआ, कृष्ण का सारे गुणों का उनका स्मरण हो गया। अभी स्मरण होने के बाद तुरंत उन्होंने सबसे पहला अपने आप को नियंत्रित करते हुए नंद महाराज के पुत्र कृष्ण का बलराम का नामकरण किया, क्योंकि संस्कार को नामकरण का है। नाम करने के बाद, नामकरण करने के बाद वो वर्णन कर रहे हैं उनकी लीलाओं का। दूसरे शब्दों में एक आचार्य कहते हैं गर्गाचार्य के मन में कृष्ण के सारे लीलाओं का अकस्मात स्मरण हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं उसको कैसे प्रस्तुत करूं, लीलाओं को वर्णन करने जाऊं तो वो इतना ठीक नहीं है, रसाबास हो जाएगा। नामकरण संस्कार में ये बच्चा पुतरा को मारेगा, ये बच्चा वो मारेगा, ऐसा बोलते जाएंगे तो हो सकता है घबरा जाए नंद महाराज, हो सकता है कि कुछ और समझे उस पुत्र के विषय में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गुप्त रूप में छुपा के कृष्ण के सारे लीलाएं एक श्लोक में वर्णन किया। कैसे, प्रत्यक्ष रूप में लीलाओं का वर्णन किए बिना अप्रत्यक्ष रूप में सारे लीलाओं को इस श्लोक में वर्णन कर दिया। लीलाएं और उनके गुणों के ऊपर आधारित उनके कार्य, यानी कि जिस जिन गुणों के द्वारा भक्त कृष्ण का महिमा का, कृष्ण के स्वरूप का आस्वादन करते हैं, उनका भी वर्णन गर्गाचार्य ने बहुत बुद्धिमता से ये श्लोक में प्रस्तुत किया। तो प्रस्तुत करने से पहले गर्गाचार्य क्या कहते हैं, येष वहा, येषा का अर्थ है येष मुद्रा। जैसे हम लोग इस किसी को दिखाना होता है, किसी को इंगित करना होता है, हम ये उंगली ऐसा दिखाते हैं, लेकिन शास्त्र में वैदिक संस्कृति में ये उंगली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी को दिखाने के लिए। जो ये उंगली ज्यादा इस्तेमाल करता है, जिसको ये श्रीराधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैं की, चाहे कोई भी कोई क्यों ना हो, चाहे वो आपसे छोटा बालक क्यों ना हो, चाहे बड़ा क्यों ना हो, वरिष्ठ क्यों ना हो, दुष्ट भी क्यों ना हो, दुष्ट व्यक्ति भी क्यों ना हो, उनको ये उंगली दिखाने से, यानी ये उंगली का अर्थ है तर्जनी, जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में, इसको जो उठाता है, जिसको दिखाता है, उसके अंदर अहंकार, ये अहंकार की उंगली है। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत अहंकारी व्यक्ति है, जिसकी उंगली ज्यादा उठती है ये समझना चाहिए उसके अंदर बहुत अहंकार है। अहंकार होने के साथ साथ में जिस दोष को दिखाता है इस उंगली के द्वारा, वही दोष उस उंगली से अंदर पहुंच जाता है हमारे हृदय में। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार किसी को अगर इंगित करना हो तो ये जो इंडेक्स फिंगर है, अंग्रेजी बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी तो पाश्चात्य भाषा है और पाश्चात्य संस्कृति है, वो मलेच्छ एवनों की संस्कृति है, उसमें क्या है, अगर किसी को दिखाना था तो यही इसको इसलिए नाम लगा इंडेक्स दिखा है। लेकिन वैदिक सभ्यता में इसको इंडेक्स फिंगर नहीं कहते हैं, वैदिक सभ्यता में इसको तर्जन ही कहा जाता है। जैसे अरे प्रत्येक उंगली रहता है उसका एक एक नाम है, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये पांच उंगलियां का नाम है, एक तर्जनी है। ये तर्जनी मतलब क्या है, जो ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता उसको तर्जनी बोला जाता है। तो ये समुद्रा, इसके द्वारा हमको सबको स्वागत करना चाहिए, किसी को इंगित करना चाहिए। मान लो कि घर में आए कोई, उनको बैठिए ऐसा बोलना चाहिए। अगर मान लो आपको भक्तों किसी को इंगित करते हैं कौन है तो दिखाना है तो क्या करना चाहिए, ऐसा दिखाना चाहिए। अब मान लो कि किसी कोई आपके गेस्ट आए के आपके मंदिर मंदिर में आए तो उनको समझाना है कि कौन है, कोई पूछेंगे कौन है तो आपको ऐसा, पुजारियों को तो ये मालूम है ये समुद्रा, लेकिन अन्य लोगों को इतना इस्तेमाल नहीं रहता है। लेकिन पुजारीगण भी मंदिर में तो ये समुद्रा के द्वारा करेंगे, लेकिन भक्तों को ऐसा उंगली दिखाएंगे ये ठीक नहीं है। हमको याद है बचपन में जब अगर कोई किसी का ये उंगली ज्यादा इस्तेमाल करते थे उसको मार पड़ती थी बहुत, जो डोसा बनाते ना उसको वो बहुत गर्म करके उसके ऊपर लगा देते, तो भाव उठता ही नहीं कभी। तो येषा शब्द के द्वारा गर्गाचार्य क्या कह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं मैं जिनका वर्णन करने वाला हूँ, यानी जिनकी तत्व का निरूपण करने वाला हूँ, वो कोई और नहीं है, यही बच्चा है। तो यही बच्चा मतलब क्या है, यही बच्चे का अर्थ क्या है, उन्हें ये नहीं कहा आपका पुत्र है, पहले उन्हें दिखाया ये बच्चा है, क्योंकि ये बालक जिनके बारे में बताने वाला हूं वो साधारण व्यक्ति नहीं है। अस्तित्व में गर्गाचार्य इतने महान आचार्य, इतने बड़े ज्योतिष है, लेकिन फिर भी येश मुद्रा के द्वारा कृष्ण को इंगित करते हुए नंद महाराज को कहते ये साधारण नहीं है। वैसे नामकरण तो कर दिया, कृष्ण करके नाम हो गया, नामकरण हो गया, और पिछले श्लोक में वासुदेव करके नाम हो, नामकरण हो गया, लेकिन भले ही उनका नामकरण हुआ, हम संस्कार कर रहे हैं, ये साधारण नहीं है। तो येश शब्द के द्वारा इंगित किया जा रहा है कि वो साधारण नहीं है। तो गर्गाचार्य कहते हैं येश वह श्रेय आधास्यात, श्रेय आधास्यात, ये व्यक्ति या ये बच्चा क्या करता है, श्रेय आधास्यात, सभी लोगों को श्रेय प्रदान करेगा, सभी लोगों को श्रेय प्रदान करेगा। खास करके किनको श्रेय प्रदान करेगा, गोप गोकुल नंदनहा, गोप गोकुल नंदनहा, किनको, गोप और गोकुल। तो गोप, गोप का अर्थ क्या है, जितने भी गायों को देखभाल करने वाले हैं उनको गोप कहा गया है। तो ये गोप शब्द में ही गोपियां भी निहित है। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि श्रेय, सारे श्रेय ये बच्चा जो है गोपों को बताएगा या प्रदान करेगा, तो गोपियों का नाम क्यों नहीं लिया इधर, ये गोप में गोपियों को भी इंगित किया गया है। क्यों, क्योंकि गोप वही है जो गोपियों के गर्भ से प्रकट होता है, गोपी से जन्म लिया तो गोप है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो खाली गायों को देखभाल करने से गोप नहीं होता है, तो गोपी के गर्भ से जन्म लिया है तो गोप है। तो गोप का वर्णन करते गोपियों का भी वर्णन हो गया, क्योंकि जो माधुरी में जो लीलाएं हैं वो उनको प्रत्यक्ष रूप में बोलने से थोड़ा सा उसका जो रहस्यमय जो तत्व है वो कम हो जाता है। जो अगर कोई चीज बहुत सीक्रेट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको गुह्य रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है। इसलिए ये गोप शब्द इस्तेमाल करके वो गोपियों को भी आनंद प्रदान करेगा या गोपियों को भी श्रेय प्रदान करेगा, ये सूचित किया गया है। गोप शब्द में गोपी भी निहित है। और गोकुल, गोकुल का अर्थ है कि वो जगह गोकुल, और साथ साथ में गोकुल का ये अर्थ है कि जितने भी गाय है, गाय को भी गोकुल कहा गया है, यानी गाय बैल बछड़े ये भी गोकुल है, क्योंकि गाय के कुल के संबंधित है। तो इधर ये गोकुल शब्द केवल क्षेत्र गोकुल ही नहीं है, बल्कि गाय के कुल के संबंधित जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं उन सबको। और एक आचार्य कहते हैं कि गोप गोकुल एक ही शब्द है। क्यों एक ही शब्द है, क्योंकि ये जो गोकुल है, गोकुल में निवास करने वाले कौन है, गोप है। वो क्यों निवास कर रहे हैं, गायों को देखभाल करने के लिए निवास कर रहे हैं। यानी दूसरे शब्दों में कृष्ण उनको श्रेय आधास्य, उनको श्रेय प्रदान करेंगे। कौन, किनको प्रदान करेंगे, जो गायों को देखभाल करते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसी के ऊपर लिखते हैं, आगे पीछे कुछ और बात को नहीं लिखते हैं। वो कहते हैं कि नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसका व्याख्या करते प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान जो है गायों को और ब्राह्मणों को देखभाल करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को देखभाल करना गौण है, इट सेकेंडरी है, मुख्य तो कौन है, गायों को। तब प्रश्न उत्पन्न होता है ऐसा क्यों है, क्या 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 है, गाय इतना प्रिय क्यों है, ब्राह्मण को प्रिय होना चाहिए भगवान, भगवान के लिए ब्राह्मण लोग प्रिय ज्यादा होना चाहिए, गायों को क्यों प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान को मालूम है अगर गाय की रक्षा होगी, गाय की पूजा होगी, ब्राह्मण संस्कृति कभी ना कभी प्रकट हो ही जाएगा। तो इसलिए भगवान जब सुबह सुबह उठते हैं या उनका दर्शन खुलता है, सबसे पहला गाय का पिछला भाग को दर्शन करते हैं। वैसे इधर भी पंचरात्र में विधि में भी ऐसा होता है, ये दक्षिण मार्ग में जितने मंदिर है उधर जाएंगे, सुबह सुबह दर्शनार्थी या मंगलारती में जाएंगे, उस समय एक गाय खड़ी रहेगी, तो जैसे पट खुलता है गाय का पिछले भाग को भगवान दर्शन करते हैं। क्यों दर्शन करते हैं? क्योंकि जब गाय के पिछले भाग से जब बछड़ा निकलता है तो बछड़ा निकलते ही गाय दूध देना शुरू करता है। तो ये दूध जब हम लोग पीते हैं या हम भक्त लोग पीते हैं तो वो दूध पीने के द्वारा उनका बुद्धि इतना सूक्ष्म होता है जिसके द्वारा भगवान की तत्व है, भगवत तत्व है, शास्त्र है, उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो उनको मालूम है कोई व्यक्ति गाय का दूध पीता है तो पीते हैं उनको ऐसा बुद्धि आता है जिसके द्वारा वो भगवान का जो शास्त्र है वो समझ सकता है। इससे कहा गया है कि जो गाय का दूध नहीं पीता है वो वास्तव में वो मनुष्य नहीं है। गाय का दूध इतना महत्वपूर्ण है। तो उनको मालूम है ब्राह्मणिकल जो सभ्यता है, ब्राह्मण की सभ्यता का आधार क्या है? गाय है। अगर गाय बचेगी ब्राह्मण बचेंगे, अगर आप ब्राह्मणों को बचाने जाएंगे गाय को बचाए नहीं बचाएंगे तो ना गाय बचेगी ना ब्राह्मण बचेगी। तो ये गोकुल ये शब्द के द्वारा ये वर्णन किया जाए, बताया जा रहा है कि भगवान जो है गायों को इतना प्रेम करते हैं तो जो भी उन गायों को रक्षा करते हैं उनको श्रेय प्रदान करते हैं। ही प्रोटेक्ट, ही गिव्स ऑस्पिशियसनेस। वो श्रेय किनको प्रदान करते हैं? गोपों को प्रदान करते हैं। क्यों प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि वो गोकुल में है। गोकुल में है का अर्थ क्या है? क्योंकि गाय को देखभाल करने गाय के कुल में है। गाय के कुल में अर्थ क्या है? काली बैल बछड़ा ही नहीं, गाय को देखभाल करने वाला भी गाय के कुल में है। तो गोप लोग किसके हैं, किस कहां है? गोकुल में है। हम कहेंगे कि गोकुल के निवासी है। गोकुल के निवासी का अर्थ ये नहीं कि खाली गोकुल प्रांत में रहने वाला, नहीं, जगह में रहने वाला नहीं, कहीं भी गाय है तो गाय को देखभाल करने वाला भी गोकुल में है, यानी गाय के कुल में है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके घर में कोई है, भले ही आपके घर में संबंधी नहीं है और उस घर में नौकर है तो फिर भी उसको कैसे देखा जाता है? मेरे कुल का व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। तो इधर गोप गोकुल नंदनहा, ये नंदनहा शब्द का अर्थ है कि आनंद प्रदान करते हैं। आपको पिछले श्लोक में मालूम है कि कृष्ण का नामकरण हुआ पिछले दो श्लोकों में। जैसे कृष्ण का नामकरण हुआ, एक कृष्ण शब्द का अनेकों अनेक अर्थ अनेकों जगह आचार्य ने दिया है, लेकिन महाभारत में ये कृष्ण शब्द का अर्थ दिया गया है कृष्ण भू आतक शब्दो न निवृत्ति वाचक तयोरोक्यम परम ब्रह्म पिदीयते। तो इस श्लोक में कहा गया है कृष्ण भू वाचक शब्द, कृष्ण का अर्थ क्या है? जो सबको आकर्षित करने वाला है। और ना का अर्थ क्या है? आनंद। तो आनंद के आनंद को प्रदान करते हैं, सबको आकर्षित करते हैं, उनको कृष्ण कहा गया है। तो ये जो नंदना शब्द के द्वारा नंद गर्गाचार्य ने कहा ये सबको आनंद प्रदान करेगा। सबको आनंद प्रदान करते हुए क्या करेगा? सबको आकर्षित करेगा, सबको आकर्षित करेगा, गोपों को आकर्षित करेगा, गोपियों को आकर्षित करेगा और सारे गायों को, गोकुल वासियों को, सबको आकर्षित करेगा। तो केवल श्रेय प्रदान करना, कृष्ण पहला बात कहा गया श्रेय आधास्यात्। श्रेय आधास्यात् का अर्थ क्या है? वो श्रेय प्रदान करेगा। लेकिन श्रेय का अर्थ क्या है? श्रेय प्रदान करने का अर्थ क्या है? सबको आनंद प्रदान करेगा, क्योंकि कृष्ण सबको श्रेय प्रदान करते हैं। इसका अर्थ क्या है? सबको आनंद प्रदान करेगा, क्योंकि वो आनंद का सागर है, आनंद का आगार है। कोई किसी भी तरीके से, कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर गोकुल में जुड़ जाता है, गोकुल के साथ संबंध रखता है, वो निश्चित रूप में वो आनंद को अनुभव करेगा, श्रेय को अनुभव करेगा। अब देखिए ये शब्द के द्वारा ने क्या किया, जितने भी भगवान के जो लीलाएं हैं, कौन सी लीलाएं हैं, खास करके जो भक्तों के साथ जो लीलाएं हैं उन सब का समरी हो गया है, यानी गोपियों के साथ, गोपों के साथ, बाल बालों के साथ, जितने भी लीलाएं भगवान ने की अपने भक्तों के साथ, वो सारे लीलाओं को समरेज करते हुए सार रूप में ये दो लाइन में प्रस्तुत कर दिया। श्री विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि गोप गोकुल नंदना, इस शब्द का कोई और अर्थ भी है। ने कहा कि हो सकता है कि वो गोप गोकुल नंदना नंद महाराज को संबोधित किया जा रहा है। नंद महाराज को संबोधित करके क्या किया कहा जा रहा है, हे नंद महाराज, जो गोप है, गोकुल में निवास करने वाले हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अनेन सर्वदुर्गाणि यूयम अंजस तरिष्यतः। क्योंकि नंद महाराज कौन है, गोकुल के राजा है और एक गोप भी है। तो हे नंद महाराज, ये नंदना शब्द का अर्थ अगर नंद महाराज देंगे, ओ नंद महाराज जो गोकुल के राजा है, आपका ये जो पुत्र है ना, ये पुत्र ये गोकुलवासियों के लिए एक बहुत बड़ा इतना सुंदर योगदान है, या इतना सुंदर बच्चा है आपका, जो भविष्य में जितने भी कष्ट आएंगे वो सबको कष्टों को दूर करेगा। क्योंकि नंद महाराज कौन है, गोकुल के राजा है, सारे लोग उनके ऊपर आश्रित हैं, तो स्वाभाविक तरीके से एक राजा चाहता है कि मुझे ऐसा पुत्र हो जो सबकी रक्षा करेगा। तो गर्गाचार्य नंद महाराज को कहते हैं, हे नंदना गोप गोकुल, यानी जो गोकुल के राजा है नंद महाराज, आप सुनिए, अनेन सर्वदुर्गाणि यूयम मंजस तरिष्यति। अनेन सर्वदुर्गाणि, बहुत सारे दुख आएंगे, बहुत सारे तकलीफ आएंगे आपके जीवन में, गोकुल में, लेकिन ये बच्चा क्या करेगा, तरिष्यतः। अनेन सर्वदुर्गाणि, सर्वदुर्गाणि का अर्थ है बहुत सारे दुखों या बहुत सारे तकलीफों को, और यूयम अंजस तरिष्यतः, उनसे आपको दूर करेगा। ये दो लाइन में नंद महाराज को क्या बता रहे, भगवान की जो असुरों को मारने की जो लीला है ना, उन सबको समराइज कर दिया। यानी बहुत सारे दुष्ट लोग आएंगे, उन सबको ये बच्चा क्या करेगा, उनको मारेगा, यानी उनको उनको दूर करेगा। तो अस्तित्व में गर्गाचार्य के मन में बहुत सारे बातें आ रही थी, बहुत सारे मन में एक असुरों को वध करने की लीला का स्मरण हो रहा था, पूतना का वध करना और कृणावर्त का वध करना और शकटासुर का वध करना, ये सब स्मरण उनके उनके मन में स्मरण हो रहा था। लेकिन अगर ये बताएंगे तुरंत, जब भी बच्चा हुआ नामकरण होगा उस समय नंद महाराज बताएंगे, पूतना करके राक्षसी आएगी और उसको ये बच्चा मार देगा, तो कैसा लगेगा पिता को। तो गर्गाचार्य को मालूम था ये सब होने वाला है, क्योंकि वो ज्योतिष है, ज्योतिष होने की वजह से उनको सब पता लग जाता है कि क्या भविष्य में क्या होने वाला है। वैसे तो भगवान के जो लीला है वो ज्योतिष शास्त्र के ऊपर हम जान नहीं सकते, लेकिन फिर भी गर्गाचार्य इतने महान आचार्य है, वो त्रिकालज्ञ है, त्रिकालज्ञ होने के नाते उनको मालूम था कि अभी तुरंत पूतना आने वाली है, बाद में शकटासुर आने वाला है, बाद में ये अनेक अनेकों असुर आने वाले हैं। तो गर्गाचार्य के मन में ऐसा आया कि मैं इन बातों को नहीं कहूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, उनको सार रूप में बताऊंगा। अंजस तरिष्यतः, ये तरिष्यतः शब्द के द्वारा उन्हें क्या बताया, भविष्य में बहुत आएंगे ऐसे भी तकलीफ। अभी ये बच्चा आया ना, ये बच्चा आते आते ही बहुत सारे तकलीफ आएंगे। अभी तक तो कोई तकलीफ था नहीं आपको, अभी कृष्ण आते आते हैं बहुत सारे असुर आएंगे। तो ये श्रीपाल वल्लभाचार्य इसका थोड़ा सा दार्शनिक उत्तर दे या व्याख्या करते हैं। दार्शनिक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कृष्ण का प्राकट्य होने से ही क्या होता है, भक्त के हृदय में जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है। कैसे दूर हो जाता है, जैसे कृष्ण ने क्या किया, पूतना का स्तन से उन्होंने जहर निकाल लिया, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो अज्ञान नामक जहर है वो कृष्ण पी लेते हैं, कृष्ण का प्राकट्य होते ही। यानी कृष्ण का प्राकट्य होते का अर्थ क्या है, कृष्ण का भक्ति को स्वीकार करने मात्र से कृष्ण जिस प्रकार पूतना का जहर, स्तन का जहर पी लिया, वैसे भक्ति हृदय में जो जहर है वो पी लेते हैं। दूसरा, जिस प्रकार कृष्ण ने शकटासुर को लात मार के मार दिया, उसी प्रकार भक्त के जीवन में जितने भी दुख है कृष्ण जो है लात मार के वो भगा देते हैं। और किस प्रकार शकटासुर का गला पकड़ के, तृणावर्त का गला पकड़ के दबा दिया, उसी प्रकार कृष्ण क्या करते हैं, भक्तों का जो भौतिक आसक्ति है उसको पकड़ के हाथ से, स्वयं हाथ पकड़ के फेंक देते हैं। یعنی خالی کیا کرنا ہوگا, اس بخت کو گوکل میں رہنا ہوگا. تو گوکل میں رہنے کا ارتھ کیا ہے, گائے کے کل کے ساتھ جڑا رہنا ہوگا. وہ جڑے رہیں گے دو چیزیں ہوگا, کیا ہوگا, ایک ہے آنند کو انبھو کرے گا, اور دوسرا کیا ہے, جتنے بھی کشٹ ہے کتنے بھی بہت سارے سمسیا ہے سنکٹ ہے وہ سب دور ہو جائے گا. تو یہ دو باتیں کو سمرائز کیا, دو باتوں کو گرگاچار نے اشتوک میں پرست کیا. کرشن آنند کے ساگر آنند پردان کریں گے, دوسرا کیا ہے, وہ سارے کشٹوں سے وہ دور کریں گے. تو انین سرو درگانی یوم انجس کرشتہ, کرشتہ کا ارتھ کیا ہے, بھوشیہ میں کریں گے. ابھی اگلے شلوک میں آپ دیکھتے ہیں کس پرکار, ایسا نہیں کہ یہ بچہ جو ہے بھوشیہ میں کرے گا, ابھی آپ کا بچہ ہے بھوشیہ میں کرنے والا ہے, نہیں, یہ بچہ سادھارن نہیں ہے, وہ پہلے بھی کر چکا ہے, لیکن آیا تھا تو کیا الگ الگ اوتاروں میں کیا ہے, جیسے اگلے شلوک میں اس کا ورنن کیا گیا ہے. تو اسی پر ولبھاچاری کہتے ہیں یہ بچہ جو ہے گیان کو پردان کر کے سبھی لوگوں کے جیون میں آنند پردان کرے گا, اور ساتھ ساتھ میں وہ کیا کرے گا, سارے جو وگن ہیں وہ سب ناش کرے گا. تو ایک طریقے سے دیکھا جائے یہ گرگاچاری کا یہ شلوک سادھکوں کے لیے اگر لیا جائے تو کوئی بھی ویکتی جو گائے کا سیوا کرتا ہے گوکل میں رہتا ہے ان کو آنند پردان کرتے ہیں کرشن اور رکشائی پردان کرتے ہیں, اور دوسرا یہ نند مہاراج خاص کر کے ان گوکل واسیوں کے بارے میں چلے بتائیں تو ان کی لیلاؤں کا آسوادن کرتے ہوئے ان کو آنند پردان کریں گے, اور ان گوکل واسیوں کو الگ الگ پرکار کے جو درگھٹنائیں ہیں ان سے ان کو بچائیں گے. تو یہ اس شلوک کا مول چیزیں ہیں. ہرے کرشنا, کوئی پرشن ہے نہ کچھ پوچھیے. برابر, تو میں یہ ورناشرم دھرم کے بارے میں تھوڑا بعد میں بات کرتا ہوں, پہلے تھوڑا کرشن لیلا چل رہا ہے اس کے وشے میں چلتے ہیں. یہ جو گووردھن دھارن کرنے کی لیلا پہلے ترنت یا پور میں یا بھگوان نے دوج پتنیوں کو دھار کیا, لیکن دوج پتنیاں بھگوان شری کرشن کو دیکھ کے ترنت لو ایز فرسٹ سائٹ درشن کرنے ماتر سے وہ شرناگت ہو گئی. لیکن کرشن نے کہا آپ جاؤ واپس اپنے گھر میں جا کے اپنے پتی کا سیوا کرو, انہیں کہ ہم نہیں جائیں گے, بہت پرشنوتری بہت ہوا, لیکن کرشن نے پھر بھی ان کو بھیج دیا. کرشن نے ان کے ہردے میں پرویش کیے اور ان سب کو ان کے ہردے میں آلنگن کیا, لیکن ان کو اسپرش نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا جنم کہاں ہوا تھا, ایک براہمن پریوار میں ہوا تھا, براہمن پریوار میں ہوا. جب تک ایک گوپی کے گرب سے جنم نہیں ہوتا ہے تب تک کرشن اس کو اسپرش نہیں کریں گے, ہیل ناٹ ٹچ. رجندر نندن کرشن اسی کو اسپرش کریں گے جو, ہاں تو آپ بولو گے پوتنا کو کیسے اسپرش کیا, کیونکہ وہ گوپی کا ڈریس دھارن کیا. تو یہ ہے جب آتا ہے ورناشرم دھن کے وشے بھوتک استر میں بھوتک جگت میں, گورکشا جو ہے وہ ویشیہ کرم ویشیہ کا کاری ہے. اب دیکھیے آپ دیکھیں گے چار ورن, چار ورن کا ورنن میں براہمنوں کے وشے میں چرچا جب ہوا بھگوت گیتا میں بھگوان نے کیا کہا, سمو دمس تپسوچم شانتیرارجنے وچا گیان وگیاناسکیم برہم کرم سوبھاوجم. ابھی ادھر برہم کرم لکھا ہے, یہ جو شبد استعمال کیا ہے سما دما اس پہ کون سا کرم کیا بتائیے, کرم ہے کیا ادھر, یہ کیول گن ہے. براہمنوں کا ورنن گنوں سے ہوتا ہے, جیسے جیسے ہمارا اور رجس تمس بڑھ جاتا ہے تو کریا کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے, لیکن تو جیسے استول ہوتا ہے اس کا اتنا کریا کو دیکھتے ہیں, کریا کے اوپر زیادہ وشیش دھیان دیا جاتا ہے. تو براہمنوں کا कार्य नहीं देखा जाता है, उनका गुण महत्वपूर्ण है। यानी दूसरे शब्दों में कार्य में और गुण में कौन सा महत्वपूर्ण चीज है? गुण महत्वपूर्ण है। जिसके अंदर जितना अच्छे अच्छे गुण का विकास होता है, अगर वो बड़ा भी कार्य ना करे, अच्छा है तो। अब देखिए कोई वैश्य है, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाता है, बनाने के बाद भी लोग बोलेंगे ये पैसा कमाने के लिए, जिसके अंदर उसको लोभ दिखाई पड़ता है। मंदिर में आता है केवल एक ब्राह्मण एक फूल देता है, बस उससे खुश हो जाते हैं। उसे कौन सा बड़ा काम किया? फूल दिया ना, उतना ही दिया ना। हाँ, लेकिन क्या अप्रिसिएशन क्या उसमें, उनका गुणगान क्या है? ये इसके पीछे गुण है, गुण महत्वपूर्ण है। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार बच्चा जन्म लेते ही लोग सोचते हैं कि ये गुणवान होगा कि नहीं। लेकिन अभी जब बच्चा जन्म लेते ही कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो सोचते हैं, क्या करेगा वो सोचते हैं, उसके पीछे करने के पीछे गुणों के विषय में कोई चर्चा नहीं करता है। समस्या ये है, अस्तित्व में हम ये जो क्रिया जो है वो रजस और तमस से उत्पन्न होता है। एक सत्वगुणी व्यक्ति है वो शांति से बैठा रहता है। समस्या ये है कि इस जगत में हम शांति से बैठो वही समस्या, वही सबसे तकलीफ कर रखा है। आप शांति से बैठ कर 2 घंटा जप करो, वही सबसे बड़ा तकलीफ है। कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि रजस और तमस है। अभी चलिए, अभी गोरक्षा, ब्राह्मण भी गोरक्षा करता है, क्योंकि समोदम तपस्सौचम शांति ज्ञान विज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान तभी हृदय प्रकट होता है जब वो गाय का सेवा करता है, नहीं तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। भैंस का दूध पीने से नहीं होता है, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए गोरक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सारे भक्तों को बार बार यही कहता हूं, दंत मंजन यूज करो, टूथपेस्ट यूज मत करो। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन आपने कोलगेट पेन टूथपेस्ट किया, बोला मैं एकादशी कर रहा हूं, कैसे संभव है? नहीं होगा। गाय का घी वापरो आप, उधर का वो तेल ये तेल ये सब चीजें, नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ब्राह्मण भी गोरक्षा करते हैं, क्षत्रिय भी गोरक्षा करते हैं, वैश्य भी गोरक्षा करते हैं और शूद्र भी गोरक्षा करते हैं। तब प्रश्न आता है कि भगवान ने वैश्यों को ही क्यों कहा? क्योंकि वैश्य मतलब क्या है? जिनके अंदर तमोगुण है और उसके पीछे नीचे रजोगुण है। तमोगुण का अर्थ क्या है? लोभ। रजस तमो भाव काम लोभाद है, लोभ तमोगुण का प्रतीक है। लोभवश क्या करता है क्षत्रिय? उनको केवल पैसा ही, वैश्य जो है उनको लोभवश वो क्या करता है? उनको केवल पैसा ही दिखता है, वो उनको पैसा सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो उसके लिए कुछ भी कर देता है। इतना हद तक अपनी मां को भी बेच देता है। तो खतरा जो है गाय के लिए किससे है? ब्राह्मण से नहीं है, क्षत्रिय से भी नहीं है, किससे है? कलयुग के जो वैश्य से है। अभी कलयुग में गौ हत्या क्यों हो रही है? केवल इकोनॉमिक गेन के लिए हो रही है। आपको मालूम है डॉक्टर महेश्वरी के प्रवचन ने आपने सुना, एक गाय जब किसान बेचता है 5,000 रुपए उसको मिलता है, मतलब जब वही वैश्य खरीद के वो फैक्ट्री में लेके जाके उसको मार के पूरा ये करता है, उसको 50,000 मिलता है। उसका प्रोडक्ट लेके कितना और कमा रहा है दूसरी बात है। कतल खाने में गाय जब कटती है तो 5,000 का गाय जो है आपको केवल एक दिन में 5,000 का 50,000 हो जाता है। उसके ऊपर खर्चा कितना? मैक्सिमम 1-1.5 हजार, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उन्होंने क्लियरली बताया। अभी ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें आप 5,000 का एक चीज लो, अगले दिन आपको 50,000 मिल जाए? तो इसलिए अर्थ युद्ध है। अर्थ युद्ध कौन कर सकता है? वैश्य कर सकता है। हाँ, तो वैश्यों के जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक आप कहीं एक एक जगह के लीडर हो, 5-6 लोग हैं, आप कहीं 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, उसमें आप एक को बोल के जाओगे देखो शांति से रहना, आप बोल के जाओगे, उसी को क्यों बोला? क्योंकि वो थोड़ा सा नटखट है, बाकी लोगों के ऊपर विश्वास है, ये नहीं बोलने पर भी करेगा, लेकिन ये जो है गड़बड़ करने वाला है। इससे उनको बोल के जाओगे शांति से रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी सब आश्वास रह सकते, समझे ना। कभी कभी कुछ उपदेश दिया जाता है एक व्यक्ति को, खास करके उपदेश उसी को, इंस्ट्रक्शन उसी को दिया जाता है, क्योंकि वो गड़बड़ करने वाला है, या गड़बड़ करने की उसके अंदर यह शक्ति है, प्रवृत्ति है। जिम्मेदारी जो है वो प्रवृत्तियों को एक सही मार्ग में रखने के लिए है, प्रवृत्तियों को सही मार्ग में रखने के लिए। तो इसलिए वैश्य को कहा गया है कृषि कृषि करो, केवल उधर का माल इधर गोलमाल मत करो, जाओ खेती में जाके उगाओ। अभी वो सब छोड़ दिए, क्या करते हैं, इधर से 50 रुपए मिल गया, झूठ बोल के उधर 10-200 रुपए बेच दिया, बोला हाँ 150 रुपए मिल गया, खुश हो गए। लेकिन ये वैश्य कर्म नहीं है, वाणिज्य है। कृषि और गोरक्षा को छोड़ दिए, केवल वाणिज्य ट्रेडिंग करते हैं। आप हर जगह बॉम्बे में देखिए ट्रेडिंग कंपनी, ये ब्रिटिशों का काम है। ब्रिटिशों ने क्या किया, हमारे जो देश का जो आर्थिक स्थिति को नाश करने के लिए ये ट्रेडिंग शुरू किया। ट्रेडर क्या करता है, ये बेटर रहेगा बस, इधर फोन करेगा, इधर फोन करेगा, झूठ बोलेगा और पैसा कमाएगा। लेकिन किसान जो है वो मर रहा है, उसका कोई चिंता नहीं है। हाँ, गाय मर रही है, उसका कोई चिंता नहीं है, ट्रेडिंग कंपनी एसी ऑफिस में बैठा है। ये अंग्रेजों ने हमारी जो आर्थिक व्यवस्था को नाश करने के लिए ट्रेडिंग शुरू किया है। तो सब लोग ट्रेडिंग करना चाहते, किसको चाहिए, हाँ, गाय का घास खिलाना नहीं चाहता है कोई, किसान बीज बोना नहीं चाहता है, सब लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वाणिज्य, वाणिज्य मतलब ट्रेडिंग। तो इसलिए भगवान ने कहा नहीं, आपको ट्रेडिंग करने से पहले सोचो, अगर ट्रेडिंग ही करते रहोगे फसल ही उड़ी हुआ, तो बाद में ट्रेडिंग करोगे क्या, वाणिज्य किसके ऊपर करोगे, कृषि गोरक्षा नहीं करोगे। तो उनको मालूम था कि कलयुग में ये वैश्य गड़बड़ करेंगे, क्योंकि लोग वश करेंगे, आप कृषि का गोरक्षा करो, कृषि करो, तभी आप जी पाओगे और लोगों को आप संभाल पाओगे। क्योंकि बाकी तीन वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र, उनकी पोषण कौन करता है, वैश्य करता है। और पोषण किस प्रकार होगा, जब कृषि होगा गोरक्षा होगा, और अपने लिए थोड़ा ट्रेडिंग है। जब वैश्य नहीं करते तो ब्राह्मणों को करना पड़ेगा, जैसे चाणक्य ने किया ना ऐसा। मुझे मालूम है इतने साल रहा साथ में, नेक्स्ट क्या होगा मुझे मालूम है। ठीक है, संतरा श्रीमद भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।
कारण है।